एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे की गाते हैं स्तुति मिलकर सारे स्वर्ग में, वो गाते तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है, आदर और महिमा मिले तुझे ही योग्य तू ही सदा।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे जब आप उसके वचनों को सुनते हैं। आइए हम उससे पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को तू खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं। हमें स्वयं से बहुतायत से आशीष दे पिता परमेश्वर। मैं मेरे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ कि तू अपने वचन से उन्हें आशीष दे और उन्हें तेरे राह में चलने के लिए मदद कर। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ्य के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है प्रभु की दाखबारी भाग दो। प्यारो, परमेश्वर का भविष्यवक्ता मूसा ने कहा था, देखो मैंने तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं जैसे मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे आज्ञा दी है। वह इसराइली लोगों को कह रहा था कि तुम उस देश में जिसका अधिकारी होने को तुम जा रहे हो उनके अनुसार चलो, इसलिए तुम उनका पालन करो और उन्हें मानो, क्योंकि यही तुम्हारी बुद्धि और विवेक है। अपनी समझ को अन्य जातियों के सामने प्रकट करो और वे ये सब विधियां सुनकर कहेंगे, निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। फिर कौन सी ऐसी बड़ी जाति है जिसका परमेश्वर उसके इतने निकट रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा सब बातों में रहता है जिनके लिए हम उसको पुकारते हैं। और कौन सी ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म विधियां और नियम हो जैसी यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। व्यवस्था विवरण 4:5-8। प्यारो, हम लोग ने देखा पहले कि किस तरह परमेश्वर इसराइल लोगों को बुलाया था विशेष जाति होने के लिए और उन्हें आशीष देने के लिए प्रतिज्ञा किया था। इसराइल के बच्चों को उन सभी क्षेत्रों पर कब्जा करना था जो परमेश्वर ने उन्हें दिए थे। वे राष्ट्र जिन्होंने सच्चे परमेश्वर की आराधना और सेवा को अस्वीकार कर दिया था, उन्हें बेदखल कर दिया जाना था। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि इसराइल के माध्यम से उसके चरित्र के रहस्योद्घाटन से लोग उसकी ओर आकर्षित हों। पूरी दुनिया को सुसमाचार का निमंत्रण दिया जाना था। बलिदान सेवा की शिक्षा के माध्यम से मसीह को राष्ट्रों के सामने ऊंचा किया जाना था और जो कोई भी उसकी ओर देखना चाहता था उसे जीवित रहना चाहिए। सभी जो रहाब, कनानी और रूत मुआबी की तरह मूर्ति पूजा से सच्चे परमेश्वर की आराधना में बदल गए, उन्हें अपने आप को उसके चुने हुए लोगों के साथ जोड़ना था। जैसे जैसे इसराइल की संख्या बढ़ती जाती, उन्हें अपनी सीमाओं को बढ़ाना था जब तक कि उनका राज्य दुनिया को अपने में समाहित ना कर ले। परमेश्वर सभी लोगों को अपने दयालु शासन के अधीन लाना चाहता है। वह चाहता था कि पृथ्वी आनंद और शांति से भर जाए। उसने मनुष्य को खुशी के लिए बनाया है और वह मानव हृदय को स्वर्ग की शांति से भरना चाहता है। वह चाहता है कि नीचे के परिवार ऊपर के महान परिवार का प्रतीक बने। लेकिन इसराइल ने परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं किया। प्रभु ने घोषणा की, मैंने तुम्हारे लिए एक उत्तम दाखलता लगाई थी जो पूरी तरह से उत्तम बीज है, फिर तुम मेरे लिए एक विदेशी दाखलता के पतित पौधे कैसे बन गए? यह हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 2:21 में। इसराइल एक खोखली दाखलता है, वह अपने लिए ही फल पैदा करती है। यह हम पढ़ते हैं होशे 10:1 में, होशे नबी का लिखा हुआ भविष्यवाणी की पुस्तक में। और अब हे यरूशलेम के निवासियों और यहूदा के लोगों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए इससे अधिक क्या किया जा सकता था जो मैंने नहीं किया? उसमें क्या किया? फिर जब मैंने देखा कि उसमें अंगूर लगेंगे तो उसमें जंगली अंगूर क्यों लगे? अब जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसकी बाड़ उखाड़ दूंगा और वह खा दिया जाएगी और उसकी दीवार को तोड़ दूंगा और वह रौंदी जाएगी और मैं उसे उजाड़ दूंगा। वह ना तो छांटी जाएगी और ना खोदी जाएगी, बल्कि उसमें कटीली झाड़ियां और कांटे उगेंगे और मैं बादलों को भी आज्ञा दूंगा कि वे उस पर वर्षा ना करें, क्योंकि उसने न्याय की आशा की परंतु उसे अंधेर ही मिला, उसने धर्म की आशा की परंतु उसे चिल्लाहट ही मिली। यशायाह 5:3-7। प्रभु ने मूसा के माध्यम से अपने लोगों के सामने विश्वासघात का परिणाम रखा था। उसकी वाचा को निभाने से इनकार करके वे खुद को परमेश्वर के जीवन से अलग कर लेंगे और उनका आशीर्वाद उन पर नहीं आ सकता था। मूसा ने कहा, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाओ, उसकी आज्ञाओं, उसके नियमों और उसकी विधियों को ना मानो जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। ऐसा ना हो कि जब तुम खाकर तृप्त हो जाओ और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगो और जब तुम्हारे गाय बैल और भेड़ बकरी बहुत हो जाए और तुम्हारा सोना चांदी बहुत हो जाए और जो कुछ तुम्हारे पास है वह बहुत हो जाए, तो तेरा मन भूल जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए और तू अपने मन में कहे, मेरे ही सामर्थ और मेरे ही हाथ के पराक्रम से मुझे यह संपत्ति प्राप्त हुई है, और यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी सेवा और उनको दंडवत करे, तो मैं आज तेरे विरुद्ध गवाही देता हूँ कि तू अवश्य नाश हो जाएगा। जिन जातियों को यहोवा तेरे सामने से नाश करेगा उन्हीं के समान तू भी नाश हो जाएगा, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना मानेगा। व्यवस्था विवरण 8:11-14 और 17, 19 और 20 में हम यह पाते हैं। प्यारो, यहूदी लोगों ने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, वे परमेश्वर को भूल गए और उसके प्रतिनिधि के रूप में अपने उच्च विशेष अधिकार को भूल गए। उन्हें जो आशीर्वाद मिले थे उनसे दुनिया को कोई आशीर्वाद नहीं मिला। उनके सभी लाभ उन्होंने लूट की। परमेश्वर ने उनसे जो सेवा अपेक्षित की थी उससे उन्होंने अपने साथियों को धार्मिक मार्गदर्शन और पवित्र उदाहरण से वंचित कर दिया। जल प्रलय से पहले की दुनिया के निवासियों की तरह उन्होंने अपने बुरे दिलों की हर कल्पना का अनुसरण किया। इस प्रकार उन्होंने पवित्र चीजों को एक तमाशा बना दिया, यह कहते हुए यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर ये है। यिर्मयाह 7:4 में हम यह पढ़ते हैं। जबकि उसी समय वे परमेश्वर के चरित्र को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे, उनके नाम का अपमान कर रहे थे और उनके पवित्र स्थान को प्रदूषित कर रहे थे। जिन किसानों को प्रभु के दाख की बारी का प्रभारी बनाया गया था, वे अपने भरोसे के प्रति बेईमान थे। पुजारी और शिक्षक लोगों के वफादार प्रशिक्षक नहीं थे। उन्होंने अपने सामने परमेश्वर की भलाई और दया तथा उनके प्रेम और सेवा के प्रति उनके दावे को नहीं रखा। ये किसान अपनी महिमा चाहते थे, वे दाख की बारी के फलों को हड़पना चाहते थे। उनका अध्ययन ध्यान आकर्षित करने और खुद की ओर सम्मान पाने के लिए था। इसराइल में इन नेताओं का अपराध सामान्य पापी के अपराध जैसा नहीं था। ये लोग परमेश्वर के प्रति सबसे गंभीर दायित्व के अधीन थे। उन्होंने खुद को यहोवा यों कहता है सिखाने और अपने व्यवहारिक जीवन में सख्त आज्ञाकारिता लाने का वचन दिया था। ऐसा करने के बजाय वे शास्त्रों को विकृत कर रहे थे। उन्होंने लोगों पर भारी बोझ डाला, जीवन के हर कदम पर अनुष्ठान लागू किए। लोग निरंतर अशांति में रहते थे क्योंकि वे रबियों द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते थे। जब उन्होंने मनुष्य द्वारा बनाई गई आज्ञाओं को मानना असंभव देखा तो वे परमेश्वर की आज्ञाओं के संबंध में लापरवाह हो गए। प्रभु ने अपने लोगों को निर्देश दिया था कि वह दाख की बारी का मालिक है और उनकी सारी संपत्ति उसे उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए ट्रस्ट में दी गई है, लेकिन पुजारियों और शिक्षकों ने अपने पवित्र पद का काम इस तरह नहीं किया मानो वे ईश्वर की संपत्ति संभाल रहे हों। वे व्यवस्थित रूप से उसके साधनों और सुविधाओं को लूट रहे थे। परमेश्वर के कार्य की उन्नति के लिए उन्हें सौंपा गया था। उनके लोभ और लालच के कारण उन्हें अन्य जातियों द्वारा भी तिरस्कृत किया गया। इस प्रकार गैर यहूदी दुनिया को परमेश्वर के चरित्र और उसके राज्य के नियमों की गलत व्याख्या करने का अवसर दिया गया। पिता के हृदय से परमेश्वर ने अपने लोगों को सहन किया। उसने दया करके और करुणा करके उनसे विनती की। उसने धैर्यपूर्वक उनके पापों को उनके सामने रखा और सहनशीलता के साथ उनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा की। किसानों पर परमेश्वर के दावे को थोपने के लिए भविष्यवक्ताओं को और दूतों को भेजा गया, लेकिन उनका स्वागत करने के बजाय उनके साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार किया गया। किसानों ने उन्हें सताया और मार डाला। परमेश्वर ने और भी दूत भेजे, लेकिन उनके साथ भी पहले जैसा ही व्यवहार हुआ, केवल इतना ही कि किसानों ने और भी अधिक दृढ़ घृणा दिखाई। अंतिम उपाय के रूप में परमेश्वर ने अपने पुत्र को यह कहते हुए भेजा, वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, लेकिन उनके प्रतिरोध ने उन्हें प्रतिशोधी बना दिया था और वे आपस में कहने लगे, यह वारिस है, आओ हम उसे मार डालें और उसकी विरासत पर कब्जा कर लें, फिर हमें दाख की बारी का आनंद लेने और फलों के साथ अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। यहूदी शासक परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने खुद को परमेश्वर से अलग कर लिया और न्यायपूर्ण समझौते के लिए उनके सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। मसीह परमेश्वर के प्रिय दाख की बारी के मालिक के दावों को पुष्ट करने आए, लेकिन किसानों ने उनके साथ घोर तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया और कहा, हम इस आदमी को अपने ऊपर शासन करने नहीं देंगे। वे मसीह के चरित्र की सुंदरता से ईर्ष्या करते थे। उनके सिखाने का तरीका उनसे कहीं बेहतर था और वे उनकी सफलता से डरते थे। उसने उनका विरोध किया, उनके पाखंड को उजागर किया और उन्हें उनके कार्य के निश्चित परिणाम दिखाए। वे उन फटकारों से जलते रहे जिन्हें वे चुप नहीं करा सकते थे। वे उच्च पद से घृणा करते थे, धार्मिकता का मानक जिसे मसीह लगातार प्रस्तुत करते रहे। उन्होंने देखा कि उनकी शिक्षा उन्हें ऐसी जगह रख रही थी जहां उनका स्वार्थ उजागर हो जाएगा और उन्होंने उसे मार डालने का निश्चय कर लिया। वे उसकी सच्चाई और धर्म प्रायणता के उदाहरण से और उसके सभी कार्यों में प्रकट उच्च आध्यात्मिकता से घृणा करते थे। उसका पूरा जीवन उनके स्वार्थ के लिए एक फटकार था और जब अंतिम परीक्षा आई, वह परीक्षा जिसका अर्थ था अनंत जीवन के लिए आज्ञाकारिता या अनंत मृत्यु के लिए अवज्ञा, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को अस्वीकार कर दिया। जब उन्होंने मसीह और बरअब्बा में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया तो वे चिल्ला उठे, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, लूका 23:18। और जब पिलातुस ने पूछा तो फिर मैं यीशु के साथ क्या करूं, तो उन्होंने उग्रता से चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाए, मत्ती 27:22 में हम पढ़ते हैं। जब पिलातुस ने अपने हाथ धोते हुए कहा, मैं इस धर्मी व्यक्ति के खून से निर्दोष हूँ, तो याजकों ने अज्ञानी भीड़ के साथ मिलकर जोर से घोषणा की, उसका खून हम पर और हमारी संतानों पर हो, मत्ती 27:24-25। इस प्रकार यहूदी नेताओं ने अपना चुनाव किया। उनका निर्णय उस पुस्तक में दर्ज था जिसे यहूना ने सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में देखा था, वह पुस्तक जिसे कोई भी व्यक्ति नहीं खोल सकता था। अपने पूरे प्रतिशोध में यह निर्णय उनके सामने उस दिन प्रकट होगा जब यह पुस्तक यहूदा के गोत्र के सिंह द्वारा खोली जाएगी। यहूदी लोग ने इस विचार को संजोया कि वे स्वर्ग के पसंदीदा थे और उन्हें हमेशा परमेश्वर के कलीसिया के रूप में ऊंचा किया जाना चाहिए। वे अब्राहम की संतान थे, उन्होंने घोषणा की और उनकी स्मृति की नींव उन्हें इतनी मजबूत लगी कि उन्होंने अपने अधिकारों को छीनने के लिए पृथ्वी और स्वर्ग की अवहेलना की। लेकिन व्यवसाय के जीवन से वे स्वर्ग की निंदा और ईश्वर से अलग होने की तैयारी कर रहे थे। दाख की बारी के दृष्टांत में मसीह ने जब याजकों के सामने उनकी दुष्टता का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया, जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो वह उन किसानों के साथ क्या करेगा। याजकों ने इस कथा को बहुत रुचि के साथ सुना था और इस विषय के अपने आप से संबंध पर विचार किए बिना ही उन्होंने लोगों के साथ मिलकर उतर दिया, वह उन दुष्ट लोगों को बुरी तरह से नष्ट कर देगा और अपनी दाख की बारी को अन्य किसानों को दे देगा जो उसे अपने समय पर फल देंगे। भाई और बहनों, यदि लोगों ने मसीह को स्वीकार कर लिया होता तो वे यहूदी राष्ट्र के विनाश को टाल दे होते, लेकिन ईर्ष्या और जलन ने उन्हें अडिग बना दिया। उन्होंने तय कर लिया कि वे नासरत के यीशु को मसीहा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने दुनिया की रोशनी को अस्वीकार कर दिया और उसके बाद से उनका जीवन आधी रात के अंधेरे की तरह अंधकार से घिरा हुआ था। उनका विद्रोही जिद्दी अभिमान ने उन पर अपने रोमन विजेताओं का क्रोध ला दिया। यरूशलेम को नष्ट कर दिया गया, मंदिर को खंडहर में बदल दिया गया और इसके स्थान को खेत की तरह जोत दिया गया। यहूदा के बच्चे मौत के सबसे भयानक रूपों से मारे गए। लाखों लोगों को बेच दिया गया ताकि वे बुतपरस्त देशों में दास के रूप में काम कर सके। यहूदी लोग परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहे और उनसे दाख की बारी छीन ली गई। जिन विशेष अधिकारों का उन्होंने दुरुपयोग किया था, जिस काम को उन्होंने तुच्छ समझा था, उसे दूसरों को सौंप दिया गया। प्यारो, हम यहूदी राष्ट्र के इतिहास में पाते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें विशेष अधिकार दिए थे। यदि वे परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते, परमेश्वर के ज्योति को दूसरों को फैलाते, वे दुनिया के राष्ट्रों के सर्वश्रेष्ठ में होते। लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को ही तिरस्कार कर दिया, जिसके कारण दाख का बारी का आशीष दूसरों को दिया गया। प्यारो, आज हमारे पास यह मौका है कि हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपनाएं, उसे तिरस्कार ना करें, कि हम परमेश्वर का आशीष पाएं। हमें यह जीवन मिला है, यह समय मिला है, इसमें हम अच्छा चुनाव करें, सच्चाई को चुने, धार्मिकता का राह को अपनाएं, प्रभु परमेश्वर के पास आए, यीशु मसीह के द्वारा धार पाए। आइए हम परमेश्वर के पास आते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं, हम सबों को तो ग्रहण कर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। हम तुझ पर विश्वास करते हैं पिता, हम तेरे पीछे आना चाहते हैं। हमें तू बुद्धि दे, हमें तू मदद कर, तो पवित्र आत्मा का आशीष दे पिता। परमेश्वर इस बुद्धि को तो यीशु मसीह के नाम से
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान,
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।